नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है राम भक्ति काव्य और तुलसीदास। राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हीं की रचनाएं राम काव्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए तुलसी के साहित्य की विशेषताओं को जानने का मतलब है राम काव्य के बारे में जानना। भक्तिकाल की राम भक्ति काव्य धारा तक राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर साहित्य रचना की समृद्ध परंपरा रही है। राम के जीवन से संबंधित पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण को स्वीकार किया जाता है। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उसमें अवतारवाद नहीं था। वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ मिलते हैं, दक्षिणात्य, गौड़ीय, पश्चिमोत्तरी। सभी में पाठ का अंतर है। राम के जीवन संबंधी रचनाओं में पर्याप्त विविधता है। इसकी प्रेरणा से ही राम काव्य की परंपरा शुरू हुई। बौद्ध व जैन ग्रंथों में भी राम कथा का प्रयोग हुआ है। दशरथ जातक, अनाकम जातक, दशरथ कथानम, तीन जातक मिलते हैं। जैन मत में विमल सूरी का पयम चरयु मुख्य है। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश साहित्य में भी राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। भारतीय भाषाओं में भी राम काव्य विपुल मात्रा में है। रामधारी सिंह दिनकर ने भारत में संस्कृतियों का जो विराट समन्वय हुआ है, राम कथा उसका अत्यंत उज्ज्वल प्रतीक है। सबसे पहले तो यह बात है कि कथा में भारत की भौगोलिक एकता ध्वनित होती है। एक ही कथा में अयोध्या, किष्किंधा और लंका तीनों के बंध जाने के कारण सारा देश एक दिखता है। राम कथा की दूसरी विशेषता है इसके माध्यम से वैष्णव और शैव मतों का विभेद दूर किया गया। वाल्मीकि रामायण से राम काव्य की शुरुआत हुई और रामानंद द्वारा विकसित होकर हिंदी भक्ति साहित्य में प्रवाहित हुई। राम भक्ति काव्य के विकास में कई कवियों ने अपना योगदान दिया है। उनमें प्रमुख हैं अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान आदि। राम भक्ति काव्य के कवियों की प्रमुख रचनाएं अग्रदास। अग्रदास की चार पुस्तकें हैं, हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यानमंजरी, राम ध्यानमंजरी, राम अष्टयाम। नाभादास, नाभादास की दो कृतियां हैं, भक्तमाल और अष्टयाम। प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जिसमें 316 छप्पियों में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चित्रण लिखे गए हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जिसमें 316 छप्पियों में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र लिखे गए हैं। ये पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है। भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी हैं। तुलसीदास, तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला नछू, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और बरव रामायण। हृदय राम, सन 1623 में संस्कृत में हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैये में बड़े अच्छे संवाद हैं। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। केशव, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ओरछा नगर में केशव का जन्म हुआ था। ओरछा के व्यासपुर मोहल्ले में उनके अवशेष मिलते हैं। आचार्य केशव की राम भक्ति से संबंधित कृति रामचंद्रिका है। राम भक्ति काव्य धारा का साहित्यिक महत्व तुलसीदास के कारण है। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के काव्य की प्रवृत्तियां ही राम काव्य की प्रवृत्तियां हैं। इसलिए हम यहाँ तुलसीदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में राजापुर नामक स्थान पर हुआ बताया जाता है। जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन विपन्न अवस्था में गुजरा। कहते हैं कि बचपन बुरी अवस्था में बीता। अशुभ ग्रह दशा में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया और बचपन में भिक्षावृत्ति का सहारा लिया। तुलसीदास ने लिखा है, नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकन लाग ललाई। तुलसीदास ने अपने काव्य में अपने जीवन के बारे में जितना लिखा है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं लिखा। तुलसीदास कई स्थानों पर रहे, अंततः काशी में ही अपना निवास स्थान बनाया। अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की थी तो काशी में विनय पत्रिका और कवितावली की। इस समय में उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। काशी के पंडित तुलसीदास से ईर्ष्या करने लगे थे और उनको जाति बहिष्कृत करने की बात भी कही जाती है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहो कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगार न सो तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कह कुछ ओ मांग कह खाइबो मसीत कसोइबो लेबे को एक न देबे को दो। चाहे कोई धूर्त कहे अथवा परमहंस कहे राजपूत कहे या जुलाहा कहे मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, न मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो। मुझको तो मांग के खाना और मस्जिद में सोना है, ना किसी से एक लेना है ना दो देना है। इस संबंध में यह प्रचलित है कि जन भाषा में रामायण रचने भूख से मरते ब्रह्म हत्यारे को भोजन कराने छुआछूत की प्रवाह किए बिना काशी प्लेग महामारी में जन सेवा के लिए अखाड़ों की स्थापना करने मस्जिद में फकीरों के साथ रहने आदि के कारण तुलसी पर बहुत प्रहार हुए, उनकी जाति पर प्रश्न उठाए गए। मेरी जात पात न चहो काहू की जात पात मेरे कौ काम को न हो काहू के काम को लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझें लोग साही को गोत गोत होत है गुलाम को साधु कह असाधु कह भलो कह पोच सोच कहा कहा काहू के द्वार परों जो हो सो हो राम को। मेरी कोई जात पात नहीं है न मैं किसी की जात पात चाहता हूँ कोई मेरे काम का नहीं है और न मैं किसी के काम का हूँ मेरा लोक प्रलोक सब राम के हाथ है तुलसी को तो एकमात्र राम नाम का ही बहुत बड़ा भरोसा है। लोग अत्यंत गंवार हैं कहावत भी नहीं समझते कि जो गोत्र स्वामी का होता है वही सेवक का होता है। साधु हूँ अथवा असाधु भला हूँ अथवा बुरा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है मैं जैसा कुछ भी हूँ राम का हूँ क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ। तुलसीदास सम्राट अकबर के समकालीन थे। कहते हैं कि अकबर ने उन्हें मनसबदारी देने की इच्छा व्यक्त की थी लेकिन तुलसीदास ने उसे यह कहकर इनकार कर दिया था कि एक भक्त को उसकी क्या जरूरत है। हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार तुलसी अब का होई हैं नर के मनसबदार। अपनी अंतिम अवस्था में वे बीमार हो गए। हनुमान बाहुक रचना में इसका मार्मिक चित्रण किया। पांव पीर पेट परी बाहु पीर मुंह पीर जर्जर सकल शरीर पीर भई है। तुलसीदास की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायी अवस्था में हुई। रचनाएं तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला नछु, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और बरवे रामायण। काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की रचनाओं को प्रबंध और मुक्तक में विभाजित कर सकते हैं। प्रबंध काव्य रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल प्रबंध काव्य हैं। मुक्तक काव्य कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला नछु, कृष्ण गीतावली और बरवे रामायण। भाषा की दृष्टि से तुलसीदास की रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अवधि रामचरितमानस, रामलला नछु, वैराग्य रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी। ब्रज कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली। रामचरित मानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र के आधार पर रचित महाकाव्य है। वैराग्य संदीपनी में संत महिमा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम जानकी विवाह वर्णन है। पार्वती मंगल में पार्वती के जन्म और विवाह उत्सव का वर्णन है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की बाल लीला एवं गोपियों का विरह वर्णन है। विनय पत्रिका में राम के प्रति विनय भाव अभिव्यक्त है। कवितावली कवित शैली में लिखा गया है। रामाज्ञ प्रश्न ज्योतिष विचार संबंधी रचना है। रामलला नछु मांगलिक लोकगीत शैली के आधार पर रचित है। नछु का अर्थ है नाखून काटना। तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित मानस है, जो घर घर में गाया व पाठ किया जाता है। भारतीय आम चेतना के निर्माण में तुलसीदास रचित रामचरित मानस की अहम भूमिका है। इसकी लोकप्रियता का कारण तुलसीदास की समाज की नैतिक समझ और लोक के प्रति संवेदना है। राम और सीता के चरित्र को अपने देश काल के आदर्शों के अनुरूप साधारण स्त्री पुरुष के रूप में जो रचना की है, उसी प्रतिभा का कमाल है कि अभी तक भी जन जन के हृदय और वाणी में स्थित है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। जीवन व जगत के विविध पक्षों की गहरी समझ है। तुलसीदास ने अपनी सृजन प्रक्रिया के बारे में लिखा है, भक्ति से कविता बनाने की सहज प्रक्रिया है। अपनी कविता को जन कल्याण के लिए कहा है। कीर्ति भनीति भूति भल सोई सुरसरिसम सबका हित होई। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। जो बरसई बर बार विचारू हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। तुलसीदास समन्वयवादी थे। तुलसीदास को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विषमता की पीड़ा का गहरा अनुभव था। धर्म साधना, दर्शन, समाज, संस्कृति, साहित्य और भाषा सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया। सगुण के उपासक होते हुए निर्गुण प्रतिपादित करके दोनों में अभेद स्थापित करने का प्रयास किया। शाक्त और शैव मत में राम एवं कृष्ण की उपासना में व्यापक समन्वय प्रस्तुत किया। अपने काव्य में आदर्श और व्यवहार, लोक और शास्त्र, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय दर्शाया है। भाषा की दृष्टि से शास्त्रीय और लौकिक भाषाओं में समन्वय स्थापित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार विचार और पद्धतियां प्रचलित हैं। तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास ने विष्णु के अवतार राम की उपासना की है। वे परब्रह्म स्वरूप हैं। राम पाप का विनाश करने और धर्मोद्धार के लिए वे मानव रूप में अवतार लेते हैं। राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। शीलता के बल पर विकट से विकट स्थितियों का सामना बड़े धैर्य और विवेक से करते हैं। वे अपनी शक्ति से दुष्टों का खात्मा करते हैं और भक्तों के संकटों का निवारण करके मुक्त करते हैं। अपनी करुणा से पतितों का उद्धार करते हैं। तुलसीदास ने काव्य में राम का लोक रक्षक और लोक मंगलकारी रूप अभिव्यक्त किया है। तुलसीदास राम को अवतारी पुरुष कहते हैं, लेकिन राम का चित्रण एक साधारण मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया है। उसके चरित्र में मानवीय दुर्बलताओं को शामिल करके स्वाभाविक बनाया है। सामाजिक जीवन में आदर्शों की स्थापना के लिए तुलसीदास ने चरित्रों को आदर्श रूप में आदर्श चित्रित किया। राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श सेवक हैं और सुग्रीव आदर्श मित्र हैं। आचार व्यवहार जीवन के मूल्यांकन की कसौटी है। स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सामाजिक दृष्टि से राम आदर्श पुत्र, भाई, पति व सखा हैं, जो अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप दिए हुए वचन का पालन करते हैं। तुलसीदास के काव्य के चरित्र आचार और लोक मर्यादा का आदर्श एवं अनुकरणीय है। चरित्रों में सार्वभौमिकता का गुण है। काव्य में रज, तम और सत तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। राम की रावण पर विजय अर्थात सत की तम पर विजय है। तुलसीदास ने काव्य में भक्ति के सभी रूपों का वर्णन किया है, किंतु भक्ति में दास्य भाव अधिक मिलता है, जिसका मूल मंत्र शरणागति है। कवितावली इसी दास्य भाव से ओतप्रोत है। सुग्रीव और विभीषण शरणागत भक्त ही हैं। तुलसीदास ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान से ऊपर प्रतिष्ठित किया है। ज्ञान को भक्ति की नींव मानते हैं। ज्ञान के साधनों को ही भक्ति का साधन बना दिया है। वैराग्य, ध्यान, विवेक तथा अंतर्दृष्टि। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक विषयों का त्याग। ध्यान का अर्थ साकार से है, जिसका संबंध राम से। ध्यान में प्रेम और आत्मसमर्पण के भावों में गहरा संबंध है। विवेक और अंतर्दृष्टि को तुलसी अपनी साधना में प्रमुख स्थान देते हैं। तुलसीदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है। मध्यकालीन परिवेश में वर्ण भेद और जातिगत बंधन कठोर थे। तुलसीदास ने निषाद, केवट, भीलनी, वनवासी, त्रिजटा, विभीषण आदि चरित्रों का भी उसी तरह से निर्माण किया है और उनको भक्तों की संज्ञा दी है। लेकिन तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था की गैर बराबरी के दर्शन के उत्पीड़नकारी स्वरूप को नहीं देख पाए। इसके लिए तुलसीदास की आलोचना होती रही है और होती रहेगी। तुलसीदास ने अपने काव्य में अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों का जितना चित्रण किया है, मध्यकाल में शायद किसी कवि ने किया होगा। अपने समय के आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का विश्वसनीय ब्यौरा दिया है। तुलसीदास ने अपने समय की दारुण परिस्थितियों का चित्रण किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकयत, साक रे सब पै राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। भयानक अकाल जैसा समय आ गया है। किसान के लिए खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, साधु संतों को दान दक्षिणा तक नहीं मिल पाती, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, चाकर को कहीं चाकरी नसीब नहीं है, बेरोजगारी के कारण लोग अत्यंत दुखी और असहाय अवस्था में पहुंच गए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, वेद और पुराण कहते हैं और संसार में देखा भी गया है कि जब ऐसी संकटकालीन दशा आती है तो राम ही रास्ता दिखाते हैं, वे ही गरीबी के रावण का नाश करते हैं। हे दीन बंधु, इस समय रावण ने संसार को ही अपने शिकंजे में कस रखा है, पाप सबको जला रहा है। ऐसे पापों का विनाश करने वाले प्रभु पधारिए, यह तुलसी आपसे ऐसी विनय करता है। तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक सामाजिक दशा का चित्रण किया है कि उस काल में अपना जीवन निर्वाह करना कितना मुश्किल था। बेरोजगारी की दशा का ऐसा चित्र अपनी ऐतिहासिकता को समेटे है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तै, आगी बड़वागी तै बड़भ है आग पेट की। दुनिया में आकर मनुष्य को अपना पेट भरने यानी आजीविका चलाने के लिए अनेक तरह के काम करने पड़ते हैं। उसे व्यापार, खेती, धंधा, भिक्षा, भटैती, नौकरी, नाच, चोरी, दूत कार्य और बाजीगिरी जैसे काम भी करने पड़ते हैं। पेट की खातिर ही कोई पढ़ता है, कोई गुण सीखता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, तो कोई घने जंगलों में शिकार पाने की लालसा में भटकता रहता है। इतना ही नहीं, जो यह सब नहीं कर पाता वह भले बुरे काम भी करता है, धर्म अधर्म दोनों में कोई भेद नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बेच डालता है। कवि कहते हैं कि पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग होती है। इसे तो राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी वर्षा से शांत कर सकते हैं। तुलसीदास ने विभिन्न शैलियों में काव्य रचना की। इस विविधता को देखकर उनकी काव्य प्रतिभा एवं कवि कर्म की व्यापकता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। रामचरितमानस में चौपाइयों का, कवितावली में कवित्व, बरव रामायण में दोहा तथा गीतावली व विनय पत्रिका में गीत शैली का प्रयोग किया। तुलसीदास बहु भाषाओं के ज्ञाता थे। अवधि, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी एवं राजस्थानी भाषाओं पर पूरा अधिकार था। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि भाषा में निपुणता के साथ रचना की तो संस्कृत में सुंदर श्लोकों की रचना की। तुलसीदास की काव्य कृतियों में अरबी और प्राकृत भाषाओं के शब्दों का प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास के काव्य में जीवन की विविधताओं का समावेश होने के कारण उसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव्य भाव की भक्ति की प्रधानता के कारण निर्वेदजन्य शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भक्ति भी मर्यादावादी होने के कारण श्रृंगार रस का सीमित चित्रण हुआ है। श्रृंगार और शांत के अलावा विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर रस भी प्रभावी निरूपण हुआ है। रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। अनेक स्थलों पर अद्भुत रस के दर्शन भी होते हैं। तुलसीदास के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से हुआ है। काव्य सौंदर्य और अर्थ प्रतिपादन के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है, न कि पांडित्य प्रदर्शन के लिए। तुलसी काव्य में अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उपमा और रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। तुलसीदास हिंदी के अमर कवि हैं, जिन्होंने साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। लोक भाषाओं को प्रतिष्ठित करने में अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग किया। तुलसीदास के सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने व लोक कल्याण के प्रयास की प्रशंसा होगी ही, लेकिन इसके वर्णाश्रम को स्थापित करने का जो रास्ता सुझाया उसके लिए उनकी हमेशा आलोचना होती रहेगी। वर्णाश्रम व्यवस्था की ऊंच नीच के अन्यायकारी व अमानवीय चरित्र को वे समग्रता में नहीं देख पाए। दोस्तों, आज हमने पढ़ा राम काव्य और तुलसीदास के बारे में। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।